ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
சூரிய மே ஜெய்சே அம்ரித் ஹை, சூரிய அம்ரித் ஹை, வேசே மே பி अमृत हो जाऊ सूर्य के समान. और सूर्य के अंदर अमृत है ये बताया. यश्च अयम् पुरुषः यश्च असौ आदित्ये इत्यादि श्रुतियों से ये प्रसिद्ध है कि सूर्य के अंदर पर भी अमृतत्व विद्यमान है. तो सूर्य के अंदर जो ब्रह्म आत्म तत्व जो विशुद्ध रूप से विद्यमान है, तद्वत, इव का अर्थ है तद्वत, ठीक वैसे ही मैं भी ऐसा ही हो जाऊं. देखिए उपनिषदों में यह भी कहा है, जो हमारी आंख में जो पुरुष है वही सूर्य में, सूर्यमंडल वर्ती जो पुरुष है. इसका बड़ा ही सुंदर वर्ण है, हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश इत्यादि से. आ प्रणखात सर्व सुवर्ण एवा, सूर्य के अंदर जो है हिरण्य सदृश पुरुष की कल्पना हमारे श्रुतियों में है. और जो सूर्यमंडल में है वो हमारी चक्षु में है, वो अमृत. उपनिषदों में ऐसा कहा. आंख में होने का अभिप्राय ये नहीं कि आंख से जैसे हम देख सकते हैं, तो ये जो दर्शन जिससे हो रहा है वो दर्शन से जो उपलक्षित वो आत्मा वही है जो सूर्य में है. इसलिए अधिदेव और अध्यात्म की एकता है. देखिए ये सारा संसार है अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, ये त्रिपुटी मूलक ही है. देखिए तीनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. देखिए अध्यात्म ये जो हमारी इंद्रिया है वो अधिभूत पदार्थों का साक्षात्कार तभी कर सकती है जब अधिदेव की कृपा ओ, तभी संभव है. केवल चक्षु के लिए ले लीजिए दृष्टांत के रूप में, वैसे तो सभी इंद्रियों में ये है सब, किंतु आंख को लीजिए. हमारी आंख जो है बिल्कुल स्वस्थ है, देखने में समर्थ है, निर्दोष है, फिर भी यदि घनघोर अंधेरा है तो अंधेरे में जो पड़ा पदार्थ है क्या उनको आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं. किंतु प्रकाश हो तो तुरंत देख सकते हैं. आंख को देखने के लिए किसकी कृपा चाहिए? प्रकाश चाहिए. प्रकाश की कृपा नहीं होगी तो आंख स्वस्थ होते हुए भी वो पदार्थ को ग्रहण नहीं कर सकती है, देख नहीं सकती है. तो वो जो प्रकाश है वो हमारी आंख के अंदर विद्यमान होते हुए जो पदार्थ को वो दिखा देते हैं. इसलिए सूर्यमंडल वर्ती जो पुरुष है वो हमारी आंख के अंदर विद्यमान है. वो समष्टि देवता है और हमारे चक्षु के अंदर वो व्यष्टि रूप से विद्यमान है. इसलिए दृष्टांत बताया वाजिनी इव, जैसे सूर्य के अंदर अमृत है श्रुति प्रसिद्ध, वो ब्रह्म आत्म तत्व विशुद्ध जो है वो ही मैं भी हूं, अथवा मैं ऐसा हो जाऊं. सिद्ध रूप में कहेंगे तो हूं या साधक रूप में कहेंगे तो मैं इस तरह हो जाऊं, ऐसा अन्वय करना। अब देखिए दूसरी बात यहां पर एक और आगे भावना की जा रही है, जैसे समझते हैं कि हम लोग धनवान है तो हमारे पास कौन सा धन है जिससे हम अपने को धनवान कहते हैं। रत्नादि, यदि हमारे पास सुवर्ण है, रजत है, रत्न है, जो भी जिसको धन कहते हैं यदि वो है हमारे पास तो हम अपने को धनवान कहते हैं। तो धनिक जो व्यक्ति है उनके लिए ये रत्नादि धन है, वैसे ब्रह्मविद के लिए ये आत्म तत्व ही क्या है, धन है। ये बात अगली पंक्ति में बता रहे, देखो द्रविणम सवर्चसम। कहते हैं जो सवर्चसम द्रविणम वो मैं हूं। आत्मतत्व क्या है, सवर्चसम द्रविणम है। सवर्चसम द्रविणम वो आत्मतत्व इसलिए है कि वो मोक्ष सुख का हेतु है। देखिए व्यवहार में हम लोग धन क्यों इकट्ठा करते हैं, कि ये सुख का हेतु है। तो जैसे बाह्य धन है वो सुख का हेतु है इसलिए हम उसको इकट्ठा करते किंतु हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये सुख का हेतु होते हुए भी दुख का हेतु वो ज्यादा है। यदि देखिए वो केवल मात्र सुख का ही हेतु होता तो जिसके पास धन है वो पूर्ण सुखी होना चाहिए था, वो मात्र सुखी ही होना चाहिए था, दुखी नहीं होना चाहिए था। किंतु संसार में ऐसा एक भी दृष्टांत नहीं मिलेगा कि जिसके पास धन है वो सुखी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि ये जो सांसारिक धन है वो जितना बढ़े इतना सुख के साथ वो दुख को भी बढ़ाने वाला हो जाता है। जितना बढ़ जाए तो भोगने की तो बात दूर, उनका रक्षण करने की चिंता सबसे बड़ी वो उपस्थित हो जाती है। और जो आत्मतत्व निष्ठ है उनको ये चिंता नहीं है। अच्छा ये धनादि है वो हम इकट्ठा करते हैं, बाह्य धन है, तो इससे होता क्या है, हमारा ये योग क्षेम चलता है। क्या चलता है, योग क्षेम। योग क्षेम की चिंता हम सबको रहती है इसलिए इसको इकट्ठा करते हैं। अब जो इस और जो चला जाता है, ये यहां पर जो जैसे बताए जा रहे आत्मज्ञान प्राप्त करने की जिसके मन में इच्छा है, ऐसा जो मुमुक्षु है वो मुमुक्षु कोटि में इस कोटि तक पहुंच जाता है तो उनको ये बाह्य योग और क्षेम की चिंता नहीं रहती है। भगवान ने कहा कि योग और क्षेम को मैं वहाता हूं, योग क्षेमम वहाम्यहम, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं योग और क्षेम का वहन करता हूं। तो जो ब्रह्मनिष्ठ है वो तो क्या हो जाता है, वो ब्रह्म रूप हो जाता है, या अभी होने के लिए जो साधन निष्ठ है उनको भी इस बात की चिंता नहीं रहती है। योग का अर्थ आप फिर आसन न ले लीजिए भी। योग का अर्थ भगवान भाष्यकार कहते हैं अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योग है, जो प्राप्त नहीं है उनको प्राप्त करने की जो इच्छा है उनको कहते हैं योग। हम लोगों की यही कमी है, जो हमारे पास है ना उनका हम आनंद नहीं लेते, जो नहीं है उनकी चिंता करते हुए दुखी होते रहते हैं। बस आज इतना प्राप्त हो गया, अब आगे मैं इतना प्राप्त कर लूं, ये चिंता बनी रहती है। इसलिए जो अप्राप्त है उनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते ही रहते हैं और सारा संसार स्वाधीन हो जाए तब भी वो अपर्याप्त ही है। फिर व्यक्ति कहेंगे कि अब जो है मंगल के ऊपर जाना है या चंद्र के ऊपर जाना है। कुछ दिन पहले आया था कि मंगल के ऊपर अब कॉलोनी बन रही है, बनने वाली है, और प्लाट भी बिक रहे हैं। बताओ प्लाट बिक रहे और लेने वाले भी है। बताओ संसार अनंत है इसलिए कामना भी अनंत है। संसार की समाप्ति नहीं है, हद नहीं है, तो कामना की भी हद नहीं है। इसलिए अप्राप्त की प्राप्ति योग है, उसमें ही व्यक्ति लगा रहता है। और जो प्राप्त है उनके रक्षण की चिंता बनी रहती है उसको कहते हैं क्षेम। प्राप्तस्य रक्षणम क्षेम, जो प्राप्त है उनको रक्षण करना है। तो ये जो बाह्य धनादि है उसकी ये हालत है। इसलिए यहां कहा गया कि द्रविणम सवर्चसम। देखो धन की आवश्यकता तो रहती ही है, किंतु यहां पर भावना ये कही गई कि ये सवर्चसम ही द्रविण है, वही पारमार्थिक धन है। इसलिए इस और जो चलते हैं, इसकी कामना से जो साधना करते हैं, मोक्ष की कामना से, मोक्ष प्राप्ति की मुमुक्ष होकर के जो साधना करते हैं, तो वो जो है उसको इस बात की चिंता नहीं रहती है। इसलिए तो देखिए हमारे यहां ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिसके पास यदि धन के लिए यदि कहे तो जो है कि फूटी कौड़ी भी नहीं थी, फिर भी जो बड़े बड़े महाराज है, राजा महाराजा उनके शरण में जाकर के लंबी दंडवत करते हैं। क्यों ऐसा? उनके पास क्या है? अब राजा के पास क्या कमी है जो अकिंचन महात्मा के पास जाकर के लंबी दंडवत करते हैं और सेवक की तरह खड़े रहते हैं? तो उनके पास ऐसा धन है जो कभी समाप्त नहीं होता है, और राजा के पास जो धन है वो समाप्त होने वाला है। हमारे यहां ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे कई एक महापुरुष है। वैशेषिक दर्शन के आचार्य है महर्षि कणाद, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जहां पर रहते थे तो वो बिल्कुल अकिंचन और अपरिग्रह अवस्था में वो रहते थे। एक सामान्य घास फूस की झोपड़ी और जो है पानी पीने के लिए एक घट आसन और जो है लिखने के लिए पत्र है, बस वो लिखा करते थे। वैशेषिक सूत्र की रचना उन्होंने की है, वैशेषिक दर्शन के आचार्य है कणाद, और उसके लिए यह भी कहा जाता है कि वो कण कण को बिन करके ला करके अपना जीवन यापन करते थे। जैसे गेहूं काट लिया तो किसान ने वो जो काटा हुआ जो घास है वो एक जगह इकट्ठा करके ले जाते हैं जिसे खलिहान बोलते हैं, तो खेत पूरा खाली कर देते थे। और फिर उस खेत पर किसान को जो कोई अपेक्षा नहीं रह जाती वो कहते हैं बस अब काट लिया अब यहां कुछ नहीं रहा। फिर उसको तो फिर बाद में पुनः उनको जो है खेत जोतना होता, तो ऐसी अवस्था में वो जाकर के वो खेत में जो छूटा हुआ जो है कटा अन्न उसको वो बिन करके लाते थे, उसमें से दाने निकालते थे और इस तरह से अपना जीवन यापन करते, ऐसा उनकी कहानी में है। तो वो जिस राजा के हद में वो रहते थे उस राजा को पता चला, किसी ने कहा कि आपके राज्य की हद में ऐसे विद्वान और दार्शनिक रहते हैं जिसके पास जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं है और आपको उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, और ये है भी यदि किसी के हद में यदि कोई विद्वान है वो इस तरह से वो रहते हैं तो उनका दोष है, वो राजा को लगता है यदि उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो। इसलिए राजा ने अपने अनुचरों से कुछ धन भेजा, अनुचर वहां गए धन लेकर के, कुटिया को बाहर से खटखटाया अंदर से, बोले कौन है, तो कहते हम अनुचर है, राजा ने हमको भेजा है ये धन देने के लिए। तो उन्होंने बिना खोले कहा कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, वो गरीबों को बांट दो। तो वो तो अनुचर ठहरे, उनके अंदर जो है विवेक तो होता नहीं, वैसे ही जो है उन्होंने उद्धत वर्तन करते हुए कहा कि आपसे और ज्यादा अपने राज्य में कोई गरीब नहीं है, सबके पास जो है खाने पीने की व्यवस्था है, आपके पास केवल नहीं है, इसलिए आप ले लीजिए। लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, वो लोग ऐसे चले आए, राजा को बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, रानी को पता चला, रानी ने कहा कि राजा जी आप खुद जाइए, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई वही महान विद्वान है। राजा ने सोचा कि ठीक है मैं ही चलता हूं, धन लेकर के मैं ही जाता हूं। तो राजा है वो खुद गए और खुद जाकर के वो धन वहां पर देते हैं, लेकिन पुनः वो आचार्य कणाद ने कहा कि मेरे को इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, अब इसको गरीबों में बांट दो। राजा पुनः लौट आए, राजा ने यह नहीं कहा कि आप जो है सबसे गरीब तो आप ही, ऐसा उन्होंने उद्धत वर्तन नहीं किया। उनको भी मन में यह लगा कि इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि गरीबों में बांट दो, वो खुद गरीब नहीं है। लेकिन बोला नहीं, वो वापस चले आए, रानी को बताया, रानी ने फिर कहा कि अरे वो कोई बड़े रसायन विद्या के जानकार है, आप इसी समय चले जाइए और उनके पास जाकर के रहे, उनकी सेवा शुश्रूषा करें और रसायन विद्या को जान ले, जिससे कि आप चाहे जितना सोना बना सकते हैं। तो राजा उसी समय रात में आए और दरवाजा खटखटाया, ऋषि ने दरवाजा खोला और लंबी दंडवत नमस्कार करते हुए प्रार्थना करने लगे कि आप मेरे को रसायन विद्या पढ़ाइए। तो ऋषि कहने लगे कि तुमको रसायन विद्या की क्या आवश्यकता है, तुम्हारे पास कोई कम धन है क्या? तो कहने मेरे पास है, फिर भी मेरे को अधिक चाहिए। तब जो है ऋषि ने कह दिया कि सबसे गरीब तो तुम हो। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम राजा होते हुए मेरे पास आकर के ये दंडवत नमस्कार कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या कमी है? भगवान भाष्यकार प्रश्नोत्तरी में कहते हैं, कोवा दरिद्र ही विशाल तृष्ण। दरिद्र कौन है संसार में? तो कहा जिसके अंतकरण में विशाल तृष्णा है वही दरिद्र है। और धनवान कौन है? तो कहा जो संतुष्ट है। इसलिए जो आत्मनिष्ठ यति है वो, जो संतुष्ट है वो सबसे धनवान है। और सबसे धन क्या है? यही आत्म तत्व। इसलिए कहा सवर्चसम द्रविणम। इसलिए आप द्रविणम या धन का आप जो है दो प्रकार कीजिए, एक सवर्चसम द्रविणम और दूसरा लीजिए अवर्चसम द्रविणम। हम लोगों के पास जो धन है वो कैसा है? अवर्चसम है। अवर्चसम उनको कहेंगे जिसका नाश हो जाता है, वो अवर्चसम द्रविणम है। और ये जो यहां पर भावना की गई कि मैं सवर्चसम द्रविणम, सवर्चसम द्रविणम उसको कहते हैं आत्म तत्व, ब्रह्म ज्ञान वही सवर्चसम द्रविणम है। इसलिए मैं ब्रह्म ज्ञान जो आत्म तत्व का प्रकाशक है वो मैं हो जाऊं। तो जैसे द्रविण यानी द्रव्य वो सुख का हेतु तो होता है, सांसारिक सुख का हेतु तो होता है, अथवा ये लीजिए कि अवर्चसम जो द्रविणम है वो सांसारिक सुख का हेतु तो होता है, वैसे ये सवर्चसम द्रविणम है वो मोक्ष के सुख का हेतु तो है। और मोक्ष सुख ऐसा है कि जिसका कभी नाश नहीं होता है, ऐसे मोक्ष का सुख मेरे को मिले इस कोटिका में हो जाऊ। और फिर कहा आगे, सुमेधा अमृतोक्षित। सुमेधा, मैं सुमेधा हो जाऊं, ऊपर से लगाए सुमेधा अस्मी। सिद्ध कोटि में मैं सुमेधा हूं और साधक कोटि में मैं सुमेधा हो जाऊं। सुमेधा किसको कहेंगे? शोभना मेधा, ऐसी बुद्धि जिसकी शोभा हो, ब्रह्म ज्ञान प्रतिपादक जो मेधा है, ऐसी मेधा वाला मैं हो जाऊं। ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादक जो ग्रंथ और ग्रंथार्थ धारण शक्ति वाला मैं हो जाऊं, ये भावना है। मेरे ग्रंथार्थ धारण शक्ति बढ़ जाए, ये भावना की गई। तो ये सुमेधा। और फिर कहा अमृतो अक्षित। सुमेधा प्राप्त होने के बाद ही अमृत यानी कि मैं अमरण धर्मा हूं, मेरे को अब मृत्यु का डर नहीं है। अमृतोक्षित, अक्षित यानी क्षिति से रहित, यानी कि मैं अव्यय हो जाऊं, मेरा कभी क्षय न हो। तो ऐसा कौन पद? आत्मा। आत्मा ही अमृतोक्षित है, यानी स्वरूप के आनंद का अनुभव मेरे को हो। तो इस तरह की जो है ये बात है वो त्रिशंकु नाम के ऋषि का ये वचन है। त्रिशंकु नाम इति त्रिशंकुर वेदानुवचनम। त्रिशंकु नाम के ये ऋषि है, उनका ये वेदानुवचनम, त्रिशंकु हो त्रिशंकु नाम के ऋषि का ये वेदानुवचनम है। वेदानुवचनम का अर्थ है वेदः वेदनम। वेदानुवचनम जो वेद शब्द है उसका अर्थ है वेदनम। वेदनम यानी कि अनुभव, आत्मज्ञान रूप अनुभव। और अनुवचनम का अर्थ है आत्मज्ञान के पश्चात जिसको ऐसा अनुभव हुआ है, तो ये त्रिशंकु ऋषि के लिए सिद्ध वचन है और मुमुक्षु के लिए ये साधक, साधक कोटि में मुमुक्षु इस तरह की भावना करे और सिद्ध कोटि में ये त्रिशंकु नाम के ऋषि ने ऐसा अनुभव किया है। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्ति के अनंतरम ये वचन है, उनका कथन है। जैसे वामदेव जी का कथन उपनिषदों में प्रसिद्ध है, वामदेव जी को ऐसा अनुभव हुआ ज्ञान के बाद कि मैं ही मनु हूं, मैं ही सब हूं, अहम मनु अभवत, ऐसा अनुभव उपनिषद में वामदेव जी का प्रसिद्ध। वैसे ये त्रिशंकु नाम के ऋषि का ये अनुभव है, यानी कि आत्म तत्व से ही कृतकृत्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्य हो जाता है। यही जो है मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसलिए इस तरह की कोटि हमारी आए, ग्रंथार्थ धारण शक्ति वधे और हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके। इसलिए इस तरह की प्रार्थना प्रतिदिन ये करनी चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।